दिन भर तारीख 21 नवंबर दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी राज। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलाया हाथ, क्या बनेगी नई सरकार?
तीनों पार्टियों ने डिसाइड किया है टू जॉइन हैंड्स। बाकी ये लीडरशिप लेवल पे, अभी हमारी लेवल पे ये बात नहीं आई है, ये बात सच है, तीनों पार्टियों ने डिसाइड किया है कि दे विल जॉइन हैंड्स।
अंडमान निकोबार में एक अमरीकी व्यक्ति की हत्या, आरोप सेंटिनलीज जनजाति के लोगों पर।
7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पर ये लोग सेंटिनलीज नहीं है, क्योंकि सेंटिनलीज को तो आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते।
और साथ ही चीन ताइवान संबंधों पर होगा दुनिया जहान।
यातायात के संबंध काफी हद तक बन चुके हैं, केवल औपचारिकता के नजरिए से वो दोनों अलग एक दूसरे को देखते हैं।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। वरिष्ठ पीडीपी नेता और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री अल्ताफ बुखारी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पीडीपी बीजेपी गठबंधन के टूटने के बाद इस साल जून में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अमृतसर के पास निरंकारी भवन पर हुए हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अमरिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस ने हमले में शामिल विक्रमजीत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ग्रेनेड फेंकने वाला अवतार सिंह नाम का दूसरा शख्स फिलहाल फरार है। रविवार 18 सितंबर को अमृतसर के पास निरंकारी भवन में ग्रेनेड हमला किया गया था। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 19 लोग घायल हो गए थे। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल में रूसी उम्मीदवार के हारने का आरोप बाहरी ताकतों पर लगाया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोफ ने अलेक्जेंडर प्रकोपचोप के चुनाव हारने का दुख जताया है, लेकिन उन्होंने चुनाव की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया। प्रकोपचोक के खिलाफ दक्षिण कोरिया के किम जोंग यंग इकलौते उम्मीदवार थे जिन्हें चुन लिया गया है। चीन के मेंग होंगवेई के बीजिंग में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद किम इंटरपोल के प्रमुख बने हैं। दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरपोल के महासचिव यर्गन स्टॉक ने कहा कि संगठन का अध्यक्ष किसी भी देश का क्यों न हो, इससे उसकी निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा,
No matter, of course, what their nationality, what the nationality of the president is,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अध्यक्ष की नागरिकता क्या है। ये इंटरपोल की निष्पक्षता और हमारे संगठन की आज़ादी को प्रभावित नहीं करेगा। आपको याद दिलाना होगा कि अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ अपना पूर्णकालिक पद बनाए रखता है। महासचिव संगठन का पूर्णकालिक कर्मचारी होता है जो सभी गतिविधियों को देखता है। ये थे इंटरपोल के महासचिव यर्गन स्टॉक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली के बजटीय योजनाओं के मसौदे के खिलाफ यूरोपीय आयोग ने प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश की है। शुरुआती जांच से पता चला है कि इटली की योजना 2019 में यूरो इस्तेमाल करने वाले देशों के साथ कई वित्तीय कानूनों को तोड़ने की है। इटली की सरकार ने टैक्स में कटौती और जनता पर अधिक पैसा खर्च करने का प्रस्ताव दिया है। यूरोपीय आयोग में यूरो के प्रभारी वाल्दिस दोम्ब्रोसक्सी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे इटली पर कर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा।
We cannot see how perpetuating this vulnerability would increase economic sovereignty.
मेरा मानना है कि ये बेहद कठोर होगा और इटली को सड़क पर ले आएगा। मुझे लगता है कि हमें इस जोखिम से बचना चाहिए। यूरोपीय आयोग में यूरो के प्रभारी वाल्दिस के शब्द। संयुक्त अरब अमीरात में एक ब्रिटिश छात्र को जासूसी के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इस मामले की सुनवाई 5 मिनट से भी कम समय तक चली, जिसमें कोई भी वकील मौजूद नहीं था। डरहम यूनिवर्सिटी में PhD के छात्र मैथ्यू हेजेस मई से जेल में थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर से, जहां जैसे जैसे राज्यपाल शासन खत्म होने का वक्त नजदीक आ रहा है, सरकार बनाने की कवायद भी तेज होती जा रही है। यहां की राजनीति में आज का दिन बेहद हलचल भरा रहा। कल जहां पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने सज्जाद लोन के थर्ड फ्रंट में शामिल होने की बात की, वहीं आज मिलकर सरकार बनाने के लिए पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। क्या जल्द ही जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनेगी? सुनिए श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
If there is a possibility, that people from different parties or people who are non-aligned, today people are looking for a change.
ये थे पीडीपी के सीनियर नेता और सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग, जिन्होंने कल बीजेपी के सहयोगी सज्जाद लोन के साथ राज्य में बनने वाले थर्ड फ्रंट में शामिल होने पर चर्चा की थी और कहा था कि अगर सज्जाद लोन थर्ड फ्रंट बनाने के लिए आगे आएंगे तो वो इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सुबह होते होते कश्मीर में राजनीतिक दिशाएं बदलने के इशारे मिलने लगे और एक नए ग्रैंड अलायंस के खाकों में रंग भरने की बातें हो रही हैं। जब बुधवार सुबह से ये खबरें सामने आने लगी कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस राज्य में नई सरकार बनाने के लिए एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, तो दोपहर डलते डलते पीडीपी और कांग्रेस ने इन खबरों पर मोहर लगा दी कि राज्य में पीडीपी, कांग्रेस और एनसी ने मिलकर सरकार बनाने की हामी भर ली है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता सईद अल्ताफ हुसैन बुखारी ने श्रीनगर में मीडिया के साथ इस बात की पुष्टि की कि तीनों ही राजनीतिक दल सरकार बनाने पर राजी हो गए हैं।
तीनों पार्टियों ने डिसाइड किया है टू ज्वाइन हैंड्स। बाकी ये लीडरशिप लेवल पे, अभी हमारी लेवल पे ये बात नहीं आई है, ये बात सच है। हमें भी जो इतलात है वो यही है कि जो चैलेंज है स्पेशल स्टेटस को, उसके लिए तीनों पार्टियों ने डिसाइड किया है कि दे विल ज्वाइन हैंड्स टू गिव अ गवर्नमेंट एंड डिफेंड द स्पेशल स्टेटस।
बुखारी ने बताया कि बहुत जल्द राज्य के लोगों को एक अच्छी खबर दी जा सकती है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटों में सरकार बनाने की घोषणा की जा सकती है। उधर ये भी खबरें सामने आई हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस बात की पुष्टि की है कि तीनों ही दलों ने सरकार बनाने पर बातचीत शुरू कर दी है। मुजफ्फर बेग की तरफ से कल दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये माना जा रहा था कि पीडीपी को एक और दचका लग सकता है। विश्लेषक और पत्रकार अहमद अली फयाज।
प्रोफाइल है, साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट पड़ सकता है पीडीपी के लिए, मैं समझता हूँ ये सेटबैक है बेशक अगर इससे अलायदा हो गए।
मुजफ्फर हुसैन बेग की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में सामने आ गई थी जब बीजेपी के करीबी माने जाने वाले पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन के बारे में कई दिनों से राज्य में ये खबरें गश्त कर रही थी कि लोन बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में एक थर्ड फ्रंट बनाकर सरकार बनाएंगे। माना यह भी जा रहा था कि अब बीजेपी के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सज्जाद लोन से परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस समय राज्य में राज्यपाल शासन लागू है। बीते 19 जून को राज्य में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार टूट चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 87 सीटें हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा और राज्य के राजनीतिक इतिहास में क्या कुछ नया लिखा जाएगा। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ सेंटिनल नाम के एक द्वीप में एक अमरीकी व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ये मामला 20 नवंबर को दर्ज किया है और ये हत्या उस इलाके में हुई है जहां संरक्षित और प्राचीन सेंटिनल जनजाति के लोग सेंटिनलीज रहते हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की अंडमान निकोबार में लंबे समय से काम कर चुके हमारे सहयोगी सुबीर भौमिक से और उनसे पूछा कि इस मामले में क्या ताज़ा जानकारी है और क्या वजहें बताई जा रही है इस घटना के पीछे।
ये जो अमेरिकन नागरिक जो है जॉन एलन चाओ, इनको मिशनरी बताया गया है कि क्रिश्चियन मिशनरी हैं और ये अमेरिका के कहाँ के हैं वो हमें नहीं पता, बट ही इज एन अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर। काफी समय से वो अंडमान आते जाते रहे हैं और खास तौर से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाकर जो वहाँ ये प्राचीन जनजाति बसते हैं ग्रेटर सेंटिनली, जिनका आबादी अब सिर्फ 50 के आसपास रह गया है। अंडमान शिखा जो लोकल न्यूज़पेपर है उन्होंने कुछ सोर्सेस को कोट किया है और हमें भी पुलिस से बताया गया कि ये 5-6 बार एक साल में ये जा चुके हैं ये अंडमान और वहां से फिर ग्रेटर सेंटिनलीज आइलैंड में जाते रहे हैं। 20 तारीख को केस दाखिल हुआ है इनका डेड बॉडी जो है 2 दिन पहले मिला और इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार जो लोग हुए हैं ये कौन लोग हैं क्या है ये नहीं पता। बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ आम लोग यानी यहाँ तक कि भारतीय कोई नागरिक का जाना भी नामुमकिन है, बट ये जॉन एलन वहाँ कोई एक लोकल जो मछुआड़े उसका सहायता से उसका नाव हायर करके वो वहाँ तक पहुँचे थे और उसके बाद उनका डेड बॉडी मिला है। जो मछुआड़ा था वो मछुआड़ा भी अभी ट्रेस नहीं किया जा सका है।
सर घटना क्या थी, ऐसा क्या हुआ जॉन जब वहाँ पहुँचे, कोई जानकारी आपके पास?
बताना बहुत ही मुश्किल है बट अजनबी तो नहीं, उनसे परिचित जरूर है बट कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा होगा क्योंकि ये जो ग्रेटर सेंट्रलीज है जिस भाषा ये बोलते हैं ये कोई समझता नहीं है। ओंगे जरवा इनका भाषा थोड़ा बहुत अंडमान में दूसरे लोग जो है वो समझते हैं। हमें ये नहीं लगता कि जॉन इनके साथ कम्युनिकेट कर पाए हैं और जाहिर है कि इनके लिए अंग्रेजी हिंदी ये सब समझना नामुमकिन है।
सुबीर जी, ये नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के बारे में कुछ और जानकारी आप दे सकते हैं?
ये सबसे प्राचीन जनजाति वहाँ का है, दूसरे भी काफी इस तरह के प्राचीन जनजाति अंडमान में बसते हैं, ओंगे जरवा ग्रेटर अंडमानीज, इन सबका संख्या जो है बहुत ही कम हो चुका है। इनका जो संख्या है ग्रेटर सेंटिनलीज ये तो बताया गया है कि 50 के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं। सेंटिनलीज जो ट्राइब ये पैसे का इस्तेमाल भी नहीं जानते हैं और इनके साथ ताल्लुकात रखना भी इलीगल है वहाँ के कानून के मुताबिक। 2017 में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि ये लोग एबोरिजिनल ट्राइब हैं, बहुत ही प्राचीन लोग हैं और इनका वीडियो वगैरह लेना और सोशल मीडिया में वो सब अपलोड करना भी गैर कानूनी है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये सबसे पुराने लोग हैं। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है पर ये लोग सेंटिनलीज नहीं है क्योंकि सेंटिनलीज को तो आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, अभी मेरा अगला सवाल वही था कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ये प्राचीन जनजाति है, प्रोटेक्टेड जनजाति है, तो ऐसे में ये मामला आगे ले जाना पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो सकता है?
पुलिस के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा और यहाँ कन्विक्शन भी नामुमकिन है क्योंकि अगर सेंटिनलीज ने इनको मारा है, अगर कोई दूसरा चक्कर है लूटने उठने के लिए, मतलब वो एक क्राइम का एंगल जो है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, ये बताना भी बहुत मुश्किल है। यही पुलिस एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं बट पुलिस के एक कार्यकर्ता ने हमको ये साफ कहा है कि अगर ये हत्या सेंटिनलीज ने किया है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो नामुमकिन है।
अंडमान निकोबार में अमरीकी पर्यटक की हत्या के बारे में जानकारी दे रहे थे सुबीर भौमिक।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
कार्यक्रम में अब मध्यपूर्व से के देश यमन से जुड़ी एक खबर। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि उनका मानना है कि युद्धग्रस्त यमन में बीते 3 सालों में कुपोषण या बीमारी के कारण 5 साल से कम उम्र के 85,000 बच्चों की मौत हुई है। इससे पहले बीते महीने संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि यमन में 140 लाख भुखमरी की कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानव के सामने अब तक का सबसे भयंकर संकट कहा था। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए भूमिका राय से।
ब्रिटेन में मौजूद संस्था सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि यमन में मानवीय मदद पहुंचाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं जिस कारण वहां रहने वालों पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। युद्ध देश के महत्वपूर्ण होदीदा बंदरगाह के पास हो रहा है जिस कारण ये स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यमन के लिए सेव द चिल्ड्रन के निदेशक तामेर किरोलोस ने बीबीसी को बताया, हम इस आंकड़े पर संयुक्त राष्ट्र के आकलन किए गए आंकड़े के आधार पर पहुंचे हैं जिसमें कुपोषण से ग्रस्त उन बच्चों की बात की गई है जिन्हें इलाज नहीं मिल पाया है और इसके बाद हमने बीते कुछ दशक में अनेक देशों द्वारा की गई उन रिपोर्टों को भी देखा है ताकि इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि अगर उक्त संख्या के कुपोषण ग्रस्त बच्चों को इलाज न मिला तो कितनों के मौत होने की आशंका है। इस आधार पर हम एक औसत तक पहुंचे हैं तो कहा जा सकता है कि 85,000 का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। यमन के लिए सेव द चिल्ड्रन के निदेशक तामेर किरोलोस के शब्द। इधर यमन में फिर से शुरू हुई लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करने के लिए यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स राजधानी सना पहुंचे हैं, जो फिलहाल हूथी विद्रोहियों के कब्जे में है। इससे पहले मंगलवार को अस्थायी युद्ध विराम टूट गया था और हूथी विद्रोहियों और सऊदी नेतृत्व में गठबंधन सेना के बीच होदीदा बंदरगाह में तेज लड़ाई शुरू हो गई थी। यमन में लड़ाई 2015 में तेज हो गई थी, जब सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हमले तेज कर दिए थे और राष्ट्रपति अब्दार बूह मंसूर हादी को देश छोड़कर जाना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक लड़ाई में 6800 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 10,700 लोग घायल हुए हैं।
गहरा रहा है यमन का संकट, रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। और अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। पिछले दिनों ताइवान की राजधानी ताइपेई में हुए गोल्डन हॉर्स अवार्ड कार्यक्रम में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए सम्मान जीतने वाली निर्देशक फू युए ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिल जाएगी। चीन से आई हस्तियों ने इसका विरोध किया और कुछ तो कार्यक्रम छोड़कर चले गए। ये कम्युनिस्ट चीन और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान के रिश्तों की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। चीन और ताइवान के बीच रूठने मनाने, लड़ने झगड़ने और कूटनीतिक चालों का इतिहास 70 साल पुराना है। इसी पर इस सप्ताह नजर दौड़ाई आदर्श राठौड़ ने कार्यक्रम दुनिया जहान में।
दुनिया जहां। चीन और ताइवान, ये दो नाम आप सब जानते हैं। जिसे हम चीन कहते हैं उसका आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जिसे ताइवान के नाम से जानते हैं उसका आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों के नाम में चाइना जुड़ा हुआ है। व्यावहारिक तौर पर ताइवान ऐसा द्वीप है जो 1950 से ही स्वतंत्र रहा है, मगर चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता है। एक ओर जहां ताइवान खुद को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानता है, वहीं चीन का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल होना चाहिए और फिर इसके लिए चाहे बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। चीन और ताइवान के इस पेचीदा विवाद की कहानी शुरू होती है साल 1949 से। ये वो दौर था जब चीन में हुए गृह युद्ध में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काईशेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कोमिंगतांग पार्टी को हराया था। जेएनयू में पढ़ाने वाली डॉक्टर गीता कोचर बताती हैं कि इस हार के बाद राष्ट्रवादी नेता चियांग काईशेक ने भागकर ताइवान द्वीप में शरण ली थी।
सिविल वॉर के चलते एक युद्ध जो दोनों पार्टीज जापान के खिलाफ कर रही थी, उसके चलते जब जापान ने पूरा इलाके छोड़ने शुरू किए तो उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा कि हम ये केएमटी की सरकार को दे रहे हैं या कम्युनिस्ट सरकार को दे रहे हैं। तो ये एक मूल मुद्दा बन गया कि ये जापान ने ये ताइवान किसको दिया, किस पार्टी को मान्यता देते हुए ये ताइवान उनको दिया गया। लेकिन क्योंकि वहाँ पे केएमटी की सरकार बनी थी, तो केएमटी सरकार हमेशा से यही बोलती रही कि मान्यता जो है पूरे चीन की मान्यता उनकी सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि रेवोल्यूशन जो 1911 का मैं रेवोल्यूशन बताई हूँ उसके बाद से एक ही सरकार को मान्यता दी गई थी जो कि केएमटी सरकार थी।
चीन की सत्ता से हटने के बाद राष्ट्रवादी कोमिंगतांग के नेता चियांग काईशेक ने ताइवान में शासन चलाना शुरू कर दिया। उस समय चीन में सत्ता में आ चुके कम्युनिस्टों के पास नौसैनिक ताकत न के बराबर थी। यही कारण था कि माओ की सेना समंदर पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकी। डॉक्टर गीता कोचर बताती हैं कि यहीं से दो राजनीतिक इकाइयां अस्तित्व में आई और वो दोनों आधिकारिक चीन होने का दावा करने लगी।
क्योंकि मेनलैंड चाइना में कई इलाकों में कोमिंगतांग गृह युद्ध में हार गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो गया था, तो माओ ज़ेडुंग ने ये बोला कि जो सरकार है उसकी मान्यता सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की हो सकती है। तब से ये मूल मुद्दा शुरू हो गया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आई सरकार कम्युनिस्ट सरकार, इसको मान्यता देनी चाहिए कि ये चीन की सरकार है या जो कोमिंगतांग इतने समय से इस पे राज कर रही थी, 1912 से उसकी सरकार राज कर रही थी और उसी को जापान ने कई इलाके भी दिए जो कि ताइवान उसमें से एक था, तो उस आइलैंड पे वो अपनी सरकार बनाई है, तो सही मायनों में उसी की सरकार को मान्यता दी जानी चाहिए।
इसके बाद दुनिया की सियासत तेजी से आगे बढ़ी। पहले ताइवान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी हिस्सा था। शीत युद्ध के दौरान ताइवान को अमरीका का पूरा समर्थन मिला हुआ था, लेकिन फिर हालात एकदम बदल गए। JNU में पढ़ाने वाले डॉक्टर रवि प्रसाद नारायण बताते हैं कि इसके पीछे बाजार का बड़ा हाथ था।
क्योंकि 1970 में आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखो कि अमेरिका के बिजनेस एंटरप्राइजेस खोज रहे थे नए नए मार्केट, और उनको पता चला कि चाइना में 600 मिलियन लोग थे उस टाइम, ये बहुत बड़ा मार्केट है, और ताइवान में थे कोई 15 मिलियन लोग या 18 मिलियन लोग। 18 मिलियन और 600 मिलियन बहुत फर्क तो पड़ता ही है। तो अमेरिकन कॉरपोरेट एंडेवर था कि मेनलैंड चाइना को रिकग्नाइज करो।
चीन के उभार के साथ ही आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ताइवान को दर्जन भर देश ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देते हैं। ये देश भी आकार में बहुत छोटे हैं, जैसे कि हैती, पराग्वे और अल सल्वाडोर। JNU के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह बताते हैं कि ये ताइवान को अलग थलग रखने की चीन की आक्रामक नीति का परिणाम है।
ये हमेशा से और आज भी एक चीन की विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है कि किसी भी देश से वो यदि कोई भी इनिशिएटिव शुरू करता है या संबंध बनाता है तो उसमें वो वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स करना जरूरी है, ऐसा एक्सपेक्ट करता है। तो हर बार देशों से जब बातचीत होती है चीन की, तो उसमें इस तरह की स्टेटमेंट हमेशा दी जाती है कि वो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, जिसका मतलब है कि वो केवल मेनलैंड चाइना या कम्युनिस्ट चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही असली चीन मानते हैं। तो इसके चलते धीरे धीरे, जैसा हमने कहा कि अब केवल 19 छोटे टापुओं वाले देश रह गए हैं जो ताइवान को एक देश के रूप में मानते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ताइवान पूरी तरह से दुनिया से कट गया है और उपेक्षित हो गया है। कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ जाने के बावजूद ताइवान की गिनती एशिया के सबसे बड़े कारोबारी देश के तौर पर होती है। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उत्पादन के मामले में दुनिया का अग्रणी देश है और इसकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जैसे अन्य देश जो ताइवान को मान्यता नहीं देते, वो उससे रिश्ते कैसे रखते हैं। डॉक्टर गीता कोचर,
अगर आप कई देश देखें पूरे दुनिया में, यहाँ तक कि इंडिया भी उसमें शामिल है, कि जो भी ताइवान के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं वो उसकी कोई एम्बेसी यहाँ पे नहीं बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज, लाइजो ऑफिसेज, इस तरह के जो अलग तरीके के लोगों का कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऑफिसेज, अध्यक्ष टाइप के ऑफिस जरूर बनते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक उसमें जाएं तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशन सिर्फ चीन के साथ होते हैं।
बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थान ताइवान को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। कहीं इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, कहीं ताइपेई या कहीं चाइनीज ताइपेई। मगर कई देशों के ताइवान के साथ आर्थिक संबंध है और ताइवान के प्रति इस आकर्षण से चीन भी बचा नहीं है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह,
वो जो आकर्षण है ताइवान का, उसकी वजह से आज भी करीब 80 देश अपने आप को उससे जुड़ा पाते हैं, पर जाहिर है कि वो उसको एक औपचारिक रूप से देश का दर्जा नहीं देते हैं, संबंध बनाए रखते हैं। तो ये चीन का प्रभाव बढ़ गया पिछले 3 या 4 दशकों में, उसी का नतीजा है कि उसके नजरिए से ताइवान भी व्यापार और निवेश से बहुत जुड़ गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, और सामाजिक संबंध भी बहुत अच्छे बढ़े हैं, लोगों का आना जाना बढ़ा है, सीधी वायु सेवा या समुद्री जो जहाज है उनकी आदान प्रदान होता रहता है। पर एक जब औपचारिकता की बात आती है तो कभी कभी इस तरह का आक्रोश नजर आता है दोनों तरफ से, कि जबकि चीन ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है और ताइवान अपने आप को एक देश का दर्जा बनाए रखने की बात करता है, तो कभी कभी इस तरह से आपस में तनाव नजर आता है दोनों तरफ से।
चीन ताइवान को अपना अंग मानता है और चाहता है कि आधिकारिक रूप से दोनों एक हो जाएं। चीन ने इस दिशा में काफी कोशिशें भी की हैं। डॉक्टर स्वर्ण सिंह कहते हैं कि इन कोशिशों के बावजूद ताइवान खुद को अलग मानता है।
चीन के दूसरे बड़े नेता तंग शाओपिंग ने एक वन कंट्री टू सिस्टम्स का जो है विचार रखा था, और कुछ उसी बड़े विचार में मकाओ और हांगकांग को जोड़ा गया है। हालांकि मकाओ और हांगकांग दोनों ही अभिन्न अंग हैं आज चीन का, पर उनमें कुछ सहूलतें या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ अब आज भी बनी हुई है। जैसे हांगकांग में अपना अलग से झंडा है, पुलिस अलग से है, करेंसी अलग से है, इस तरह से मकाओ में भी कुछ छूट दिए हुए हैं, पर वो अपने आप को आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पूर्णतः हिस्सा मानते हैं। इस तरह की बातचीत ताइवान से भी लगातार होती रही, पर वहाँ पर इसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। दोनों तरफ से अपने व्यापारिक और सामाजिक यातायात के संबंध काफी हद तक बन चुके हैं, केवल औपचारिकता के नजरिए से वो दोनों अलग एक दूसरे को देखते हैं। अभी तक चीन नहीं देखता उसको अलग से, पर ताइवान अपने आप को मानता है कि वो अलग है चीन से।
लेकिन जानकारों का ये भी कहना है कि इतनी कोशिशों के बावजूद ताइवान का चीन का आधिपत्य स्वीकारना आसान नहीं होगा। डॉक्टर रवि प्रसाद नारायण बताते हैं कि इस राह में कई मुश्किलें हैं।
मेनलैंड चाइना का ये है कि चाइना एक हो जाएगा जब ताइवान चाइना के साथ ज्वाइन हो जाए, पर वो ज्वाइन कैसे करेंगे? इज इट बाय मिलिट्री स्ट्रेंथ या कुछ और तरीका है? अगर वो दूसरा तरीका या तीसरा तरीका है, अभी तक वो क्लियर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगा, पर ताइवान में डेमोक्रेसी इतना जुड़ा हुआ है कि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज जो है, दो इम्पोर्टेंट पार्टीज है, एक तो KMT है कोमिंटांग और दूसरा है DPP मिनचेनडांग, जो लोकल लोग है जो अपने आप को ताइवानीज बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कोमिंटांग जो मेनलैंड चाइना से लोग आए, तो लोकल मेनलैंडर पॉलिटिक्स यहाँ बहुत चलता है। ताइवानीज तो उनको पता है कि उनका क्या बोलते हैं फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग जैसे इतना डोमिनेंट आदमी जब आ जाएगा और आ भी वो पावर में है, कुछ भी हो सकता है।
फिर सवाल उठता है कि चीन और ताइवान के बीच ये जो दशकों पुराना खिंचाव चला रहा है, उसका हल क्या होगा? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह,
विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आने वाले दशकों में या आने वाली शताब्दी में इसका बहुत महत्व नहीं रह जाएगा कि एक राज्य दूसरे राज्य से किस तरह से जुड़ता है, लोग आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। और जाहिर है कि इसका प्रभाव बढ़ने से राज्यों के संबंधों में भी कुछ न कुछ सफलता मिलेगी उनको भी अपने इस तरह के जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए।
चीन और ताइवान के बीच रिश्तों की कोई दूसरी मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं है। दोनों ही देशों के नागरिकों की संस्कृति, भाषा और इतिहास एक है, लेकिन दो अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की वजह से 70 साल पहले हुए अलगाव को एकजुटता में बदलना मुश्किल हो रहा है। ताइवान लिबरल डेमोक्रेसी की हामी भरता है और चीन वन पार्टी सिस्टम वाला देश है। इस मिलन में यही सबसे बड़ा पेच है।
दुनिया जहान की आज की कड़ी आपको कैसी लगी? आपके खतों का हमें इंतजार रहेगा। और अब रुख खेलों की दुनिया का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी ज्योतिका सिंह, जानते हैं उनसे आज कैसा रहा भारत का प्रदर्शन।
जी बिल्कुल, मैं एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहूंगी। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन के गाबा में खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के बारिश से प्रभावित पहले मैच में भारत को 4 रन से सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करते हुए हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने बारिश के कारण 17 ओवर के मैच में तब्दील किए गए मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट पर 158 रन बनाने दिए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार भारतीय टीम को जीत के लिए 174 रन का लक्ष्य मिला। इसके जवाब में टीम इंडिया 7 विकेट खोकर 169 रन बना सकी। जीत के लिए भारत को अंतिम ओवर में 13 रन की दरकार थी, लेकिन वो केवल 8 रन बना सकी और 2 विकेट गंवा दिए। जब तक ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक की जोड़ी मैदान में थी, टीम इंडिया जीत हासिल करती दिखाई दे रही थी, लेकिन पंत के आउट होने के बाद टीम इंडिया की लय बिगड़ गई और भारत ने मैच गंवा दिया। अगर टीम के कप्तान विराट कोहली की बात करें तो उनका बल्ला पहले मैच में नाकाम रहा। वो 8 गेंदों पर 4 रन ही बना सके। उन्हें एडम जंपा ने अपना शिकार बनाया, साथ ही साथ शिखर धवन ने धमाका कर दिया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। धवन आज अपने रंग में नजर आए, उन्होंने इस दौरान 8 चौके और 1 छक्का जड़ा।
और अब कार्यक्रम में आपसे विदा ले, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधुवासिनी से।
बीबीसी समाचार। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। वरिष्ठ पीडीपी नेता और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री अल्ताफ बुखारी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अमृतसर के पास निरंकारी भवन पर हुए हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल में रूसी उम्मीदवार के हारने का आरोप बाहरी ताकतों पर लगाया है। इटली के बजटीय योजनाओं के मसौदे के खिलाफ यूरोपीय आयोग ने प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश की है। संयुक्त अरब अमीरात में एक ब्रिटिश छात्र को जासूसी के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सवेरे। तब तक आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।